أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے خیالات کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ کتنی صورتوں میں خریدار، گراہک یا بیچنے والا جو معاملہ تجارت کی ہے، جو معاملہ کیا ہے، جو خرید و فروخت کیا ہے، اس کو باطل کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں اور سامان یا پیسے کو واپس لے سکتے ہیں. یہ سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. آج کے پروگرام میں ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ خیالات کے احکام کیا ہیں. یہاں پر چند احکام بیان کرنے ہیں، جن میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر خریدار کو خریداری کرتے سمے اس چیز کی قیمت معلوم نہ ہو جس کو وہ خرید رہا ہے، یا قیمت تو معلوم ہو لیکن خریدتے وقت اس کی طرف متوجہ نہ ہو، ایسی صورت میں اگر بیچنے والا اس کو اس چیز کو مہنگی بیچ دیتا ہے یا ایسی صورت میں اگر بیچنے والا اس چیز کو مہنگی بیچ دیتا ہے چنانچہ اگر اتنا مہنگا بیچ دے کہ عام طور پر سننے والے لوگ یہ کہیں کہ بہت مہنگا بیچ دیا ہے اور تم کو جو ہے وہ ٹوپی اڑا دی گئی ہے، گویا عام طور پر جو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بیوقوف بنا دیا گیا ہے یا ٹوپی اڑا دی گئی ہے یا چونا لگا دیا گیا ہے، اگر لوگ اس طرح سے کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگا تم کو بیچ دیا گیا ہے اور لوگ جو ہیں اس کی کمی اور زیادتی کو اہمیت دیتے ہوں، یعنی اتنا مہنگا بیچا گیا ہو کہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہوں، تو اس صورت میں جو ہے چونکہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور اس کو چیز بہت مہنگی دے دی گئی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو واپس کر دے. مثال کے طور پر ایک گھر کی قیمت کسی شہر میں 5 لاکھ روپیے ہے، لیکن گراہک کو نہیں معلوم کہ اس گھر کی قیمت کتنی ہوگی اور بیچنے والا اس گھر کو اس شخص کو 6 لاکھ کا بیچ دیتا ہے. عام طور پر 1 لاکھ روپیے کی جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں کافی اہمیت ہوتی ہے اور لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں بیوقوف بنا دیا گیا ہے، اسی طرح کی باتیں کہتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ مہنگی بیچ دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ گھر کو واپس کر سکتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر بیچنے والے کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، مثال کے طور پر بیچنے والا اپنی کسی چیز کو بیچ رہا ہے اور جس سے خریدا ہے، یعنی جس نے خریدا ہے اس نے جو پیسے دیے ہیں یا کسی چیز کے بدلے میں جو خریدا ہے اس میں بیچنے والے کو دھوکہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی انڈیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد کسی سے کوئی سامان خریدتا ہے دہلی میں. عام طور پر جو ہے وہ ایسے شہروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسری کنٹری کے پیسے بھی وہاں پر دکاندار لے لیتے ہیں، جیسے عام طور پر قم میں یا عراق میں، نجف اور کربلا وغیرہ میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ سامان جب ہم سے خریدتے ہیں تو ڈالر بھی لے لیتے ہیں، ایران کا پیسہ بھی لے لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایران میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے قم اور مشہد وغیرہ میں کہ جب ہم وہاں سے سامان خریدتے ہیں تو وہ لوگ ڈالر بھی لے لیتے ہیں، روپیہ بھی لے لیتے ہیں اور عراق وغیرہ کے پیسے بھی لے لیتے ہیں. تو ہم کسی، مثال کے طور پر میں خود اپنے اوپر مثال دے دیتا ہوں، کسی سے کوئی سامان خریدوں اور اس کے بدلے میں ایران میں یا کسی دوسری کنٹری میں اس کو روپیے دوں، اس انسان کو یا تو روپیے کی قیمت معلوم نہیں ہے یا وہ روپیے کی طرف متوجہ اس وقت جو ہے وہ متوجہ نہیں ہے، اور جب ایک ہزار روپیے کی قیمت 50,000 تومان ہو اس وقت میں میں اس سے 70,000 تومان کا سامان خریدتا ہوں اور اس کو 1,000 روپیہ دے دیتا ہوں، गोया कि 20,000 तुमान का मैंने उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचाया। तो ऐसी सूरत में जैसे ही दुकानदार मुतवज्जे हो और समझ जाए कि उसके साथ धोखा हो गया है, वो मामले को तोड़ सकता है, अपने पैसे को, अपने सामान को वापस ले सकता है और मेरे पैसे को मुझे वापस कर सकता है। ये पहला मसला। अब दूसरा मसला ये है कि अगर ख़रीदार मामले के बाद, यानी जो तिजारत की है उसके बाद मुतवज्जे हो जाए और समझ जाए कि जो सामान मैंने ख़रीदा है उसके अंदर कोई ऐब पाया जाता है, और वो इस बात को समझने के बाद भी अगर मामले को नहीं तोड़ता है, यानी चीज़ ख़रीदी उसके बाद समझ गया कि इसमें ऐब पाया जाता है, उसको इख्तियार है कि वो उस मामले को तोड़ दे, अपने पैसे वापस ले ले, सामान को वापस कर दे, लेकिन वो फ़ौरन वापस नहीं करता है और दिल से उसी पर राज़ी हो जाता है, तो मराजे और फकहा फरमाते हैं कि अब उसको हक हासिल नहीं है कि बाद में वो उसको वापस करे और मामले को तोड़ दे। लेकिन यहाँ पर बाज़ मराजे फरमाते हैं कि अगर उसने फ़ौरन वापस नहीं किया तब भी उसको हक हासिल है कि वापस कर सकता है। इस मसले में लोग अपने अपने मुज्तहिद की तरफ रुजू करें। तीसरा मसला यह है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को ख़रीदने के बाद उसके ऐब को समझ जाए कि उसके अंदर कोई ऐब पाया जाता है, तो उस इंसान को पूरा पूरा हक हासिल है कि वो उसको वापस करे, अपने पैसे को ले ले, चाहे दुकानदार बेचने वाला राज़ी हो या ना हो, वो अपने पैसे को वापस ले सकता है और सामान को वापस कर सकता है। चौथा मसला ये है कि कुछ मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर ये मालूम हो जाए कि माल में ऐब पाया जाता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो ग्राहक ना तो मामले को तोड़ सकता है, ना तिजारत को तोड़ सकता है, और ना ही जो ऐब की वजह से उसकी कीमत कम हो जाती है और इसने कीमत ज़्यादा अदा की है, बेऐब सामान की कीमत अदा की है, तो जितनी कीमत ज़्यादा अदा की है उस कीमत को भी वापस नहीं ले सकता। ये चार मौरिद हैं, चारों को हम आपके सामने बयान करते हैं। सबसे पहला मौरिद ये है कि इंसान खरीदारी करते वक्त जानता हो कि जो सामान मैं ख़रीद रहा हूँ उसके अंदर कोई ऐब पाया जाता है। इसको तमाम फुकहा ने कबूल किया है कि अगर वो जानता है कि जो सामान ख़रीद रहा हूँ उसके अंदर कोई ऐब पाया जाता है फिर भी उसको ख़रीद रहा है, तो फिर उसको हक हासिल नहीं है कि वो मामले को तोड़े और उसको बातिल कर दे या उसके बदले में, ऐब के बदले में उससे, दुकानदार से कोई कीमत ले ले। दूसरी सूरत यह है कि ख़रीदार जो है वो राज़ी हो ऐब से, यानी किसी चीज़ को ख़रीद रहा हो और वो इस बात पर राज़ी हो कि अगर इसमें कोई ऐब हुआ तब भी मैं इसको कबूल कर लूँगा, तब भी इसको रख लूँगा, यानी खुद अपने आप इस बात से राज़ी हो। तो अक्सर फुकहा फरमाते हैं कि इस सूरत में भी इसके लिए ये हक हासिल नहीं है ग्राहक को कि ये बाद में उस चीज़ को वापस करे और अपने पैसे ले। लेकिन बाज़ मराजे फरमाते हैं कि सिर्फ इसका राज़ी होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर ये चाहे तो बाद में अपने पैसे को वापस ले सकता है और इस सामान को वापस कर सकता है। इसमें भी दोस्तों को चाहिए कि वो अपने मर्जे तकलीद की तरफ रुजू करें। तीसरी चीज़ ये है कि इंसान जो है वो मामला करते वक्त, यानी ख़रीदारी करते वक्त ये कहे कि अगर इस माल में कोई ऐब हुआ तब भी जो है मैं इसको वापस नहीं करूँगा और उस ऐब के बदले में भी कोई कीमत नहीं लूँगा। अगर ये मामला करते वक्त ये कहता है तब भी अक्सर मराजे और फुकहा फरमाते हैं कि इसको बाद में मामला तोड़ने का हक हासिल नहीं है, तिजारत को ख़त्म करने का हक हासिल नहीं है, ये अपने पैसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन बाज़ मराजे कहते हैं कि ये मामले को तोड़ सकता है। इस मसले में भी दोस्तों को चाहिए कि वो अपने अपने मर्जे तकलीद की तरफ रुजू करें। चौथी चीज़ ये है कि बेचने वाला जब मामला कर रहा हो, तिजारत कर रहा हो, तो बेचने वाला उस वक्त ये कहे कि मैं ये सामान, ये चीज़ जो बेच रहा हूँ इसमें जितने भी अयूब पाए जाते हैं उन तमाम अयूब के साथ इतनी कीमत पर बेच रहा हूँ, आपको लेना हो लीजिए और ना लेना हो ना लीजिए, अगर बेचने वाला ऐसी शर्त कर देता है और बात कह देता है तो और ख़रीदने वाला ख़रीद लेता है तो बाद में ख़रीदार को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो मामले को तोड़ दे। ये पांचवा चौथा मसला था जिसमें हमने चार चीज़ें बयान की है। अब पांचवा मसला हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, और पांचवा मसला ये है कि अगर बेचने वाला बेचते वक्त जो चीज़ बेच रहा है उसके ऐब को बयान करते, मिसाल के तौर पर कहे कि ये चीज़ जो है इसके अंदर ये ऐब पाया जाता है और मैं इस ऐब के साथ इस चीज़ को बेच रहा हूँ, और ख़रीदने वाला उस चीज़ को ख़रीद ले लेकिन बाद में मालूम हो कि उसके अंदर वो ऐब जो बेचने वाले ने बताया था वो तो पाया ही जाता है लेकिन दूसरा ऐब भी उसके अंदर मौजूद है, तो इस सूरत में अगर ग्राहक चाहे तो मामले को तोड़ सकता है, अपनी कीमत को वापस ले सकता है, या उस ऐब के बदले में जो ऐब उसके अंदर पाया जाता है दुकानदार से या बेचने वाले से कुछ कीमत वापस ले सकता है, कुछ पैसे वापस ले सकता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान किसी भैंस या किसी गाय को बेचता है और भैंस को बेचते वक्त बताता है कि देखिए हमारी जो भैंस है इसके अंदर ऐब ये पाया जाता है कि इसके एक पैर में लंग है, ये लंगड़ा कर चलती है, और ख़रीदार उसको ख़रीद लेता है लेकिन बाद में मालूम होता है कि इसके अंदर ऐब ये भी पाया जाता है कि ये दूध नहीं देती है या बहुत कम दूध देती है, और ये जो है वो इस बात के ख़िलाफ़ हो जो बेचने वाले ने पहले बयान भी किया था। मिसाल के तौर पर चूँकि आमतौर पर जब भैंस वगैरह ख़रीदी जाती हैं तो ये बात जो है वो बयान की जाती है और सामने रखी जाती है कि कितना दूध देती है, और अब जब ये ख़रीद लाया है तो वो ऐब तो मौजूद है ही है जो उसने बताया था कि लंगड़ी है, लेकिन उसके अलावा ये भी ऐब मौजूद है, उसने बताया था कि मिसाल के तौर पर इतना दूध देती है लेकिन ये दूध देती नहीं है या देती है तो बहुत कम देती है, ऐसी सूरत में अगर चाहे तो ये दूसरे ऐब की बिना पर इस भैंस को वापस कर सकता है, अपने पैसे ले सकता है, या ये जो दूसरा ऐब पाया जाता है इसके बदले में कुछ कीमत भैंस को बेचने वाले से ले सकता है। इसके बाद छठा और आखिरी मसला हमारे प्रोग्राम का ये है, और इसके बाद प्रोग्राम यहीं पर तमाम हो जाएगा, वो मसला ये है कि अगर तिजारत के बाद, ख़रीदने के बाद, मामले के बाद मालूम हो कि ऐब पाया जाता है, जो चीज़ ख़रीदी है उसके अंदर ऐब पाया जाता है, और जिस इंसान ने ये चीज़ ख़रीदी है वो पहले ही बेचने वाले से कह चुका है कि कुछ भी हो मैं ये जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ इसको वापस नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में चूँकि ये इंसान जिसने ख़रीदा है यानी ग्राहक इसका जो हक़ था वापस करने का ये इसको पहले ही ख़त्म कर चुका है, लिहाजा अब अगर इसके अंदर कोई ऐब भी पाया जाता है तो ये इंसान उस चीज़ को वापस नहीं कर सकता है। हाँ इतना ज़रूर है कि इस ऐब के बदले में बेचने वाले से कुछ कीमत वापस ले सकता है, कुछ पैसा वापस ले सकता है जो इस ऐब के बराबर हो, यानी इसने जो कीमत अदा की है वो एक सालिम और सही चीज़ की अदा की है लेकिन ये जो चीज़ इसको मिली है वो ऐबदार है, लिहाजा ये जितनी ऐबदार चीज़ की कीमत है उतनी मालिक अपने पास रखे, बेचने वाला अपने पास रखे, और बाकी को ग्राहक उससे ले सकता है और मुतालबा कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रोग्राम तमाम होता है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।